दिन भर एक जुलाई रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। भारत की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की संदिग्ध हालात में मौत, अभी तक नहीं सुलझी गुत्थी।
कुछ पैटर्न्स हमने नोट किए हैं, उसके बेसिस पे कुछ चीजें हम फॉर्म अप कर रहे हैं।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भीषण हादसा, खाई में गिरी बस, 48 लोगों की मौत।
बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें टोटल 60 लोग थे और जिसमें 48 की डेथ हो गई है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में 7 साल की बच्ची से क्रूरता की घटना पर अभी भी बरकरार है तनाव।
उस दरिंदे को इतनी कड़क से कड़क सजा मिले कि हर एक लड़के की रूह कांप जाए।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। उत्तरी दिल्ली के संतनगर बुराड़ी में आज सवेरे एक परिवार के सभी 11 सदस्यों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। इन शवों के चेहरे कपड़ों से ढके थे और कईयों के हाथ बंधे थे। मामले के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुराड़ी गए और पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों से बात की। इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में अब तक साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है और फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। मेक्सिको में आज लोग देश के इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में मतदान करने वाले हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए हो रहे इन चुनावों में वामपंथी नेता और मेक्सिको के पूर्व मेयर आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रादोर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनका वादा है कि वो देश को भ्रष्टाचार और अपराध से निजात दिलाएंगे। न्यूयॉर्क के काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में मौजूद मेक्सिको की जानकार शैनन ओनील का कहना है कि चुनाव जीतने पर ओब्रादोर अपने वायदों को पूरा करने को लेकर गंभीर होंगे या नहीं, इसमें संदेह है।
While he personally is a quite austere man, very few have accused him personally of corruption. There are those around.
निजी तौर पे वो एक बेहद अच्छे इंसान हैं और उन पर शायद ही किसी ने कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो, लेकिन उनके आसपास ऐसे लोग हैं जिनका कानून के साथ पुराना नाता है और उनके खिलाफ कई आरोप भी हैं। अब तक हमने चुनाव अभियान में जो देखा उसके अनुसार अगर आप देखें तो जिसे वो पावर माफिया कहते हैं, वो अपनी सरकार में उन लोगों को कोई जगह नहीं देंगे, लेकिन कई तो उनके खुद के राजनीतिक खेमे में ही हैं। तो ऐसे में वो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, लेकिन वो इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। मेक्सिको की जानकार शैनन ओनील के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड की नौसेना के तैराक देश के उत्तरी प्रदेश में मौजूद उस गुफा तक पहुंच गए हैं जहां बीते एक सप्ताह से 12 युवा फुटबॉल खिलाड़ी अपने एक कोच के साथ फंसे हुए हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि ये लड़के और कोच गुफा के भीतर किसी ऐसी जगह तक पहुंच सके होंगे जहां ताज़ा हवा और ऑक्सीजन मौजूद हो। गुफा के भीतर की ऐसी जगहों को थाईलैंड में पटाया बीच के नाम से भी जाना जाता है। बचाव कार्य की निगरानी कर रहे थाईलैंड नेवी के रियर एडमिरल आपाकोन युकोंग काउ ने कहा,
को ขอ เรียน ง่ายๆ ว่า จาก 2-3 เนี่ย ไป 3 แยก จาก 3 แยก ไป พัทยา บีช นะ ครับ।
हम गुफा के तीसरे कमरे से निकलकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके बाद शायद हम उस पटाया बीच तक पहुंच पाएं। ये काम बेहद मुश्किल है क्योंकि वहां अंधेरा तो है ही, साथ ही अब भी पूरा पानी भरा हुआ है। और इस आज के बारे में जो चीज़ खास है वो मैं आपको बता सकता हूं कि हमने अपना काम तेज़ कर दिया है और हम और भी तेज़ी से काम करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि सभी का सहयोग हमारे पास है। थाईलैंड नेवी के रियर एडमिरल आपाकोन युकोंग काउ के शब्द। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में अधिकारियों का कहना है कि जलालाबाद शहर में एक आत्मघाती हमलावर ने एक धमाका किया है जिस कारण कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल हुए हैं। जलालाबाद से मिल रही रिपोर्टों के अनुसार हमलावर ने अल्पसंख्यक सिख समुदाय के कुछ लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जो प्रांतीय सरकार के दफ्तर की तरफ मार्च में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये धमाका अफगान सरकार के तालिबान विद्रोहियों के खिलाफ अभियान दोबारा शुरू करने के एक दिन बाद हुआ है। इससे पहले सरकार की तरफ से ईद तक एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति इशाक जहांगीरी ने कहा है कि ईरान निजी कंपनियों को देश के भीतर से तेल निर्यात करने की इजाज़त देगा और देश में अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के खिलाफ डटकर खड़ा होगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। भारत की राजधानी दिल्ली में बुराड़ी इलाके में आज सुबह दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। इस इलाके के एक मकान में एक ही परिवार के 11 लोग मृत पाए गए। 10 लोग फंदे से लटके पाए गए, जिससे सामूहिक आत्महत्या का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। सुनिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
उत्तरी दिल्ली के संतनगर बुराड़ी इलाके की गली नंबर 4A में आज सुबह एक 3 मंजिला मकान में घर के सभी 11 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए, जिनके मुंह कपड़ों से ढके थे और कईयों के हाथ बंधे थे। इस घर में 10 लोग फंदे से लटके मिले, जबकि सबसे बुजुर्ग महिला फर्श पर मृत पड़ी थी। इसमें 7 महिला और 4 पुरुष हैं, जिसमें से 3 नाबालिग हैं। ये परिवार मूलतः राजस्थान से है, लेकिन 20 साल से अधिक समय से बुराड़ी में ही रह रहा था। तकरीबन 75 साल की महिला नारायण, उनके दोनों बेटे, उनकी दोनों हुए और पोते पोतियां घर में मृत पाए गए। इनके अलावा बूढ़ी महिला की बेटी और नातिन भी मृत पाई गई हैं। नारायण की नातिन की अभी हाल ही में 17 जून को सगाई हुई थी और जल्द शादी होनी थी। पुलिस घटना के हर एंगल से तफ्तीश कर रही है और उसने इसे हत्या की घटना मानने से भी इनकार नहीं किया है। सेंट्रल रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश खुराना ने बताया,
कुछ पैटर्न हमने नोट किए हैं, उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें हम फॉर्म अप कर रहे हैं। बाकी अभी हम कोई चीज़ हम रूल आउट नहीं कर रहे। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम ऑल पॉसिबल एंगल्स।
इस घर में ही ग्राउंड फ्लोर पर 2 दुकानें हैं। एक किराने की दुकान है, जो बूढ़ी महिला के बड़े बेटे भुप्पी चलाते थे, और दूसरी दुकान प्लाईवुड की थी, जिसका काम उनके छोटे बेटे ललित देखते थे। इतने सारे लोगों के मृत पाए जाने के बारे में सबसे पहले पता उनके पड़ोसी गुरचरण सिंह को लगा। तकरीबन 70 साल के गुरचरण सिंह बताते हैं कि सुबह 7 बजे जब वो घर में घुसे तो वहाँ का नजारा देख कर दहल गए।
देखे ऊपर जाकर देखा, दरवाजा खुला ही था, ये भी खुला था, लॉक नहीं था नीचे वाला। अच्छा। को खोलिया, बेचारे का ऊपर वही खुला ही था, बीच वाला कमरा, उसमें देखा जा
आउटर रिंग रोड से सटा बुराड़ी इलाका पहले गांव हुआ करता था, लेकिन दिल्ली की बढ़ती आबादी के बाद बुराड़ी इलाके में यूपी, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों के काफी लोग आकर यहां बस गए। इस इलाके में अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी रहते हैं। इस परिवार के सामने वाले घर में लाइब्रेरी भी चलती है। एक दूसरे पड़ोसी टीपी शर्मा कहते हैं कि इस परिवार की कभी किसी से दुश्मनी देखने को नहीं मिली। टीपी शर्मा बताते हैं,
हाँ, इससे बढ़िया फैमिली संसार में कोई नहीं होगा। इतने महिला अनुसार अपना तो दुख था ही था, औरों का भी दुख में भी जाते थे।
अच्छा,
पूरा मोहल्ला मतलब सारे ये खड़े हैं, इनके लिए रोने वाले खड़े हैं। ऐसे नहीं खड़े, तमाशा भी नहीं है, रोने वाले खड़े हैं, ऐसी फैमिली थी।
इस परिवार की एक पड़ोसन सीमा बताती हैं कि ये परिवार उनके साथ सत्संग जाता था और किसी भी धार्मिक कार्य में आगे रहता था। वो शक जाहिर करते हुए कहती हैं कि ये आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता है।
बहुत अच्छी प्यार भाव वाले और सत्संग के हर जगह जाने, हमारे साथ सत्संगी थे, सत्संगी सारी ये थी, कहीं भी जाना, पड़ोस में मंदिर में जन्माष्टमी होती थी, सारी सजावट यही उनकी बेटी और वो करते थे, इनके चाचा करते थे। इतने अच्छे विचारों के थे, बहुत ज्यादा
और इतनी बड़ी घटना के बाद सारे नेताओं का घटना स्थल पर आना जाना जारी है। क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी घटना स्थल पर पहुंचे। हालांकि दोनों नेताओं ने पुलिस की रिपोर्ट आने तक इंतजार करने को कहा है। उन दोनों का कहना है कि इस पर पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पुलिस ने हत्या की बात को भी खारिज नहीं किया है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी मोर्चरी में भिजवाया गया है। इतनी बड़ी घटना के क्या कारण थे, ये तो पोस्टमार्टम और पुलिस की जाँच से ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस 3 मंजिला मकान में अब एक पालतू कुत्ता ही जीवित बचा है। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में 48 लोगों की मौत हो गई। धुमाकोट तहसील में एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे पर ताजा जानकारी के लिए मैंने कुछ देर पहले उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के प्रमुख संजय गुंजियाल से बात की।
देखिए, ये लगभग 8:45 की बात है। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक धुमाकोट तहसील है, वहाँ धुमाकोट बॉनकोट एक मोटर मार्ग है, वहाँ क्वीन गांव के पास में आज सुबह मैसेज आया था कि एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें टोटल 60 लोग थे और जिसमें 48 की डेथ हो गई है, जिसमें 45 की डेथ ऑन द स्पॉट हुई थी, और बाकी जो 3 लोग है वो सीरियस थे तो उनकी बाद में डेथ हुई थी। और इसमें लोकल में डूमाकोट जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सबको एडमिट किया था, जिसमें जो तीन लोग ज्यादा बाद में सीरियस हो गए थे उनको रामनगर पहुंचाया गया। और अभी तीन सीरियसली इंजर्ड को हम लोग यहाँ एम्स ऋषिकेश में बायर लेकर आए हैं और उन्हें एम्स में उनका उपचार चल रहा है।
जी अभी उसके बाद जैसा कि ये भी माना जा रहा था कि बस जो थी वो छोटी थी, कैपेसिटी कम थी उसकी, ज्यादा लोग थे, क्या इसके कारण भी
एरिया, क्योंकि ये अभी हम लोग का जो पूरा फोकस था लोगों को उपचार देना और फर्स्ट एड और उनको जो भी इंजर्ड है उन्हें प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना, तो इस ये हमारी पहली प्राथमिकता थी, तो उस लिहाज से हम लोग ने इसी पे फोकस किया था। लेकिन जो अभी तक दो चार फैक्ट आए हैं, जैसे कि बस की कैपेसिटी कम थी, 30 के लगभग थी या 30 से कम थी, और उसमें अब क्लियर हो गया है कि ओवरलोडिंग का शायद अभी इसमें काफी लोग थे, तो एक ये बात आई है। दूसरा रोड में कुछ ये भी आई विटनेस के द्वारा जो लोग थे वहां पर इंजर्ड उनके द्वारा बताया गया कि रोड के बीच में गड्ढा था, तो उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसमें कोई राजपत्र अधिकारी है जो कि इस पूरे इंक्वायरी को देखेंगे, तो उनके सामने ये सारे फैक्ट आएंगे, तभी जाके हम लोग कह पाएंगे कि क्या क्या कमियां इसमें रही है।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुए दर्दनाक हादसे के बारे में जानकारी दे रहे थे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के प्रमुख संजय गुंजियाल। और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर धुलिया जिले में भीड़ द्वारा 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। क्या है ये मामला, कहां घटना हुई और अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है, इस बारे में जानकारी के लिए कुछ ही देर पहले मैंने बीबीसी मराठी सेवा के हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकरे से बात की।
जो स्थानीय एसपी है उनसे बात हुई थी, जो उनका कहना है कि 5 लोग वो गांव में आए थे, राइनपाड़ा करके ये गांव है, ये ट्राइबल गांव है, तो ये लोगों पे जब भीड़ को शक हुआ तो उन्होंने उनकी इंक्वायरी की, जब कुछ जवाब नहीं मिले तो सीधा भीड़ ने इनको पीटना शुरू कर दिया। भीड़ को डाउट था कि ये बच्चे पकड़ के लेके जाते हैं, उनका अपहरण करते हैं, इस शक पे उन्होंने इनकी पिटाई शुरू की। पहले तो पिटाई की, जब कुछ लोग बीच बचाव करने आए तो उनको उन्होंने खदेड़ दिया और एक रूम में लेके गए और वहाँ काफी सारे पत्थर और बड़े रॉड से इनको पिटा गया, जो जगह पे इनकी मौत हो गई है।
जी अभी तक क्या ये पता चल पाया, क्या पुलिस की तरफ से ये जानकारी आई कि मरने वाले लोग कौन थे, कहां से आए थे?
पुलिस की तरफ से इतनी ही जानकारी आई है कि ये लोग सोलापुर से आए थे, जो महाराष्ट्र का लगभग 400 किलोमीटर दूर से ये लोग आए थे, और ये पारधी समाज के लोग कहा जाता है कि ये वो लोग थे, क्योंकि काफी सारी पिटाई हुई और जो मुंह जो आइडेंटिफाई करना है वो काफी मुश्किल हो गया है, और ऊपर से भीड़ ने क्या किया है, इन लोगों के खिस्से में जो भी पॉकेट में था वो सब निकाल लिया है, तो पुलिस को काफी दिक्कत हो रही है इनको आइडेंटिफाई करने में। लेकिन जो इनके कपड़े हैं उनके टेलर मार्क से पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है कि ये लोग सोलापुर से आए हैं।
जी क्या अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, किसी तरह की गिरफ्तारी इस मामले में?
पुलिस की जांच चल रही है इस मामले में, 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अलग अलग 50 लोगों के उन्होंने मोबाइल लिए हैं जांच के लिए, जो वीडियो बना रहे थे वहां, तो उसी गांव के 50 लोगों के मोबाइल भी पुलिस ने फिलहाल लिए हैं उनके पास।
हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकरे बता रहे थे कि महाराष्ट्र के धुलिया में जहां पर भीड़ ने 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या की है, उस मामले में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया है। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां मंदसौर में जिस 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हिंसा का मामला हुआ था वो अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। दूसरी तरफ शहर में इस घटना को लेकर तनाव अभी भी बरकरार है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने मंदसौर से भेजी है ये रिपोर्ट।
शाम के 6 बजे हैं और मंजर है मंदसौर शहर के बीचों बीच का गांधी चौराहा। कोई 2 दर्जन स्कूली छात्र छात्राएं हाथ में मोमबत्तियां लिए अपना विरोध जताने आए हैं। साथ में प्रार्थनाएं हैं उसके लिए जिससे न कभी ये मिले हैं और न जिसे इन्होंने कभी देखा है। सभी उस 7 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हिंसा के खिलाफ अपनी अपनी नाराजगी लेकर पहुँचे हैं। तनिषा जैन इन्हीं में से एक है।
हमें जस्टिस चाहिए, आज हमारी मंदसौर में हुआ है, कल कहीं और होगा, बस अब कल कहीं और नहीं होना चाहिए। उस दरिंदे को इतनी कड़क से कड़क सजा मिले कि हर एक लड़के की रूह कांप जाए। उसको ऐसी फांसी दो, ऐसी सजा दो कि जो उस बालिका ने उसके साथ किया है उसको वो हर टॉर्चर करे पुलिस।
पिछले मंगलवार हुई इस घटना के बाद से इलाके में जबरदस्त तनाव है। घंटों के भीतर ही सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर अपना गुस्सा जाहिर करने उतर आए थे। सभी को इस बात का सदमा था कि आखिर कैसे किसी मासूम को स्कूल से बहला फुसला के ले जाया गया और फिर इतना दर्दनाक अंजाम सामने आया। मंदसौर के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह को सुनिए।
जो स्कूल का CCTV कैमरा था वो खराब पड़ा हुआ था, स्कूल के चौकीदार और जो शिक्षक थे वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे, तो हम लोगों ने शहर में लगभग जो जो रास्ते हैं वहाँ से CCTV की फुटेज एकत्रित करना शुरू किया और संभावित रास्तों पर जो है हमने खासकर CCTV के 1-1.5 घंटे के फुटेज को खंगाला, तो 3 CCTV फुटेज में हमें संदिग्ध लड़का और बालिका दिखी। फिर इस CCTV फुटेज को लेकर हम लोगों ने परिवार वालों से संपर्क किया और उन्हें CCTV फुटेज दिखाया गया। उसमें उन्होंने बताया कि ये बिटिया हमारी ही है, लेकिन इस लड़के को हम लोग नहीं पहचानते।
इस छोटे से शहर में एक ऊंची सी पहाड़ी भी है जिस पर न्यायालय परिसर है। हम जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि बलात्कार मामले पर वकीलों की कोई बैठक चल रही है। थोड़ी ही देर में पता चल गया कि जिले के वकीलों ने भी एक कड़ा फैसला ले लिया है। जयदेव सिंह चौहान मंदसौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
इस घटना ने पूरे मंदसौर शहर को हिलाया है और ये जो घटना है ये मानवता के विरुद्ध अपराध है, पूरी मानव समाज के प्रति अपराध है। इसको देखते हुए जिला अभिभाषक संघ मंदसौर ने निर्णय लिया है कि हम में से कोई भी व्यक्ति आरोपी की ओर से पैरवी नहीं करेगा।
तनाव इस बात को लेकर भी रहा है कि अभियुक्त अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। हालांकि जैसे ही घटना के बारे में पता चला था, इलाके के तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसकी निंदा करते हुए दोषियों के लिए फांसी की सजा की गुहार लगाई थी। आज भी समुदाय का फैसला साफ है। मोहम्मद आरिफ मंदसौर की ईमान तंजीम के प्रमुख हैं।
हमारे जो मुस्लिम समाज के जो अंजुमन है उन्होंने भी इस घटना का विरोध करते हुए आग्रह किया है कि अगर इस आरोपी को सजा होती है, फांसी की सजा होती है, उसके बाद उसको कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करने दिया जाएगा और उसके पश्चात जिस मोहल्ले में वो आरोपी रहा करता था उसको उसके परिवार को उस मोहल्ले से भी निकाल दिया गया ताकि आने वाले समय में आरोपी इस प्रकार के कृत्य करने से रुके और इस प्रकार के जो अपराध है उसकी रोकथाम हो।
इस बीच पीड़ित बच्ची का इलाज मंदसौर से करीब 4.5 घंटे दूर इंदौर शहर में चल रहा है। अस्पताल में जबरदस्त पुलिस का पहरा है और माँ बाप से किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की जान बचा ली गई है। MY अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर पॉल ने बताया,
अब बच्ची की जो कंडीशन है मेडिकल कंडीशन उसमें काफ़ी सुधार आ रहा है और एट प्रेजेंट बच्ची खाना पीना अपना खा रही है, माँ बाप से अपने इंटरेक्शन कर रही है और उसके जो भी इंजरीज थी उसमें सुधार हो रहा है।
हालांकि जिन दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक के परिवार ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। दोनों अभियुक्त फिलहाल पुलिस रिमांड पर हैं और मामले में अगला बड़ा और निर्णायक कदम यही हो सकता है कि पीड़ित बच्ची इलाज के बाद होश आने पर गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान कर सके। लेकिन जो सबसे बड़ी हकीकत है वो ये है कि भारत में इस तरह के अफसोसनाक मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नितिन श्रीवास्तव, BBC मंदसौर, मध्य प्रदेश।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मेक्सिको में देश के इतिहास के सबसे बड़े चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। यही नहीं, इन चुनावों के लिए प्रचार अभियान के दौरान इतनी राजनीतिक हिंसा हुई जितनी पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई। सितंबर से लेकर अब तक 100 से ज्यादा राजनेताओं की हत्याएं हुई हैं। आज मेक्सिको की जनता इस उम्मीद में वोट डाल रही है कि जब नई सरकार बनेगी तो वो भ्रष्टाचार के साथ साथ हिंसा पर भी लगाम लगाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार।
लातिन अमरीकी देश मेक्सिको में अब से लगभग 1 घंटा पहले राष्ट्रपति, संसदीय और स्थानीय चुनावों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मेक्सिको सिटी के मेयर रह चुके आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर राष्ट्रपति पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। 64 साल के ओब्राडोर ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वादा किया है कि वो देश को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त कर देंगे। अगर उनकी जीत होती है तो यह 1929 के बाद से लेकर अब तक ऐसा पहली बार होगा जब अब तक मेक्सिको पर राज करने वाली दो प्रमुख पार्टियां इंस्टीट्यूशन रेवोल्यूशनरी पार्टी और नेशनल एक्शन पार्टी के बजाय किसी तीसरी पार्टी को मौका मिलेगा। आंद्रेज की नज़दीकी टक्कर सेंटर राइट उम्मीदवार रिकार्डो अनाया से है जिन्होंने खुद को एक जनवादी नेता के तौर पर प्रचारित किया है। मेक्सिको में राष्ट्रपति चुनावों के साथ साथ 18,000 पदों के लिए संसदीय और स्थानीय चुनाव भी हो रहे हैं। मेक्सिको की 40% आबादी गरीब है देश के कई इलाकों में भ्रष्टाचार और हिंसा के कारण बहुत सी कंपनियों को अपना व्यापार तक समेटना पड़ा है। इन चुनावों में खूब हिंसा हुई है और प्रचार अभियान के दौरान 130 से ज्यादा राजनेताओं की जान गई है। मेक्सिको को पत्रकारों के लिए भी दुनिया का सबसे खराब देश माना जाता है।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आज जीएसटी को लागू हुए पूरा एक साल हो गया है। इस मौके पर केंद्र सरकार ने जीएसटी डे मनाया। इसके कार्यक्रम को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और कहा कि जीएसटी के चलते टैक्स कलेक्शन में तो इजाफा हुआ ही है, जरूरी चीजों पर टैक्स घटने से जनता को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा होने के कारण अब सरकार स्लैब में और कमी कर सकती है और जनता को राहत दे सकती है। ये तो हुई सरकार की बातें, सरकार के दावे, लेकिन जनता पर इसका क्या असर पड़ा है? जो कारोबारी हैं वो जीएसटी आने से पहले और जीएसटी आने के बाद उनके जीवन में या उनके जो उनका कारोबार करने का तरीका था उस पे कितना असर हुआ, क्या पहले से सहूलियत हुई है या उनकी मुश्किलें बढ़ी है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र ने बात की अलग अलग कारोबारों से जुड़े लोगों से।
कुछ सेक्टरों में जीएसटी का ज़्यादा है और कुछ सेक्टरों में कम है। जैसे एजुकेशन सेक्टर मान लिया जाए, तो मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हूँ, मैं स्वयं भर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जैसे 18% जो है एजुकेशन में आपका जीएसटी है, और वही रेस्तरा में और बियर बार वाइन में अन्य चीज़ों में जो है जीएसटी काफ़ी कम है। तो कहने मतलब गवर्नमेंट में जो डिसबैलेंस ऑर्डर है और जो व्यापार उद्योग जगत प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और जो जीएसटी गवर्नमेंट ने बनाई थी बिना पूर्णकालिक, बिना एक योजना के तहत बनाई गई थी, एक शब्दों में कहूँ तो जीएसटी अच्छी है और इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है।
जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है उन देशों के लिए जो देश विकसित है, उन देशों के लिए जीएसटी आज भी बहुत बेहतर चीज़ नहीं मानता मैं। जिस देश की जनसंख्या में 67% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें से साक्षरता का आधार जो माना गया है केवल वो सिग्नेचर माना गया है। जीएसटी और भारतीय अर्थव्यवस्था के और भी जो टैक्स के प्रोसीडिंग हैं, जिस पर हमने एक देश एक करके नारा दिया, वो आज भी इतना टफ सेक्टर है जिसको बिना सीए के आप भर नहीं सकते। जीएसटी प्रोसीडिंग को आपको हल्का बनाना होगा, नहीं तो हम एक जीएसटी भरेंगे, जीएसटी की एक हम सीए करेंगे, सीए हमसे अलग चार्ज लेगा, सरकार हमसे अलग चार्ज लेगी। विकासशील देश है हम, बड़े पैमाने पर जीएसटी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। सर
सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो इनकम टैक्स के लोग थे, वकील थे, सीए थे, ये सब जो पहले काम कर लेते थे, बड़ी आसानी से हम लोग का टैक्स पेड हो जाता था, हम लोग रेगुलर टैक्स पे ही हैं। जब से जीएसटी आया है, ये पोर्टल की जानकारी अभी तक तो हमारे जो वकील साहब जो काम करते थे, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब काम करते थे, उन्हीं लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। वो कभी ये बताते हैं, कभी वो बताते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, करना चाहते हैं, चीज़ तो अच्छी है जो भी है जैसे है। अब जो भी स्लैब सरकार ने बनाए हैं वो सरकार जाने, हम लोग के लिए जो भी सिस्टम है उसको हम फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन करें तो कैसे फॉलो करें ये नहीं समझ में आ रहा।
पहले क्या था कि आप ये भरिए, वाणिज्य कर भरिए और कई कर होते थे उसमें, अब सब समेट के एक कर कर दिया है, तो आने वाले समय में व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा समस्याएं हैं, लेकिन आने वाले समय में इन फ्यूचर वो उसका रिजल्ट बेटर होगा।
ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी क्या सोचते हैं, बता रहे हैं मनीष शांडिल्य। मनीष शांडिल्य ने उनसे बात की, आइए सुनते हैं उन कारोबारियों का क्या कहना है।
बिजनेस में तो फर्क नहीं आया है, लेकिन बिलिंग ये सब तो आसान हो गया है।
क्या क्या आसानी महसूस कर रहे हैं?
आसानी हो गई, कहीं भी जो प्रॉब्लम पहले होता था कि कहीं कोई और रेट मिलता था, हम लोग को कहीं और रेट मिलता था, वो सब तो सब इक्वल हो गया। जैसे मैं, हम लोग का तो सबसे बड़ा एक रिटेलर के लिए यही था कि जैसे मैं रेट कटिंग का सवाल होता था, रेट कटिंग जैसे होता था कि पहले यूपी में टैक्स कम है, यहाँ टैक्स ज़्यादा है, वो सब तो बंद हो गया था, हम लोग के लिए तो आसान हो गया।
जैसे हम लोग का ज्वेलरी का है तो हम लोग के लिए तो काफ़ी अच्छा ही हो गया है, इसलिए कि पहले था कि कैश में हम लोग को बहुत सारा पैसा लेन देन करना पड़ता था, मिनिमम 10 लाख हुआ, 15 लाख हुआ, व्यापारी आ रहा है जा रहा है, तो अब हम लोग को चेक के थ्रू करना पड़ता है, जो काफ़ी सुविधाजनक है, कहीं स्नैचिंग नहीं है, कहीं रॉबरी नहीं है। जीएसटी आने से अब सारा चीज़ पक्के में हो गया, तो कस्टमर भी चाह रहे हैं कि हम कार्ड से दें, कैश लोग लेके चल नहीं रहा है। नहीं, देखिए थोड़ी सी तो परेशानी हुई कि एक हम लोग को पहले हम लोग खुद ही कर लेते थे, लेकिन अब एक अकाउंटेंट ये एक, लेकिन उससे हम लोगों काफ़ी माने ओनर को तो बहुत ज़्यादा फायदा है कि अब कहीं कैश लेके चलना नहीं है। जैसे हम लोग एग्जीबिशन में जाते थे तो कैश ले जाना है, ठीक है, अब कुछ नहीं ले जाना, चेक ले जाना है, एक चेक दिया 10 लाख का परचेज करके चले।
आप सुन रहे थे पटना के कुछ कारोबारियों को जो बता रहे थे कि एक साल पहले से लेकर अब तक जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें सहूलियत हुई है या कुछ मुश्किलें हुई है। और अब समय है खेल समाचारों का। आदेश कुमार गुप्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी देखिए आदर्श, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर फुटबॉल की बात की जाए तो जो फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, मेज़बान रूस का सामना वहां पर चल रहा है, और रूस जिन्होंने ग्रुप स्टेज में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब क्योंकि नॉकआउट मुकाबले शुरू हो गए हैं और स्पेन जैसी टीम के साथ उनका मुकाबला है, और थोड़ी देर पहले रूस के लिए कोई बहुत अच्छा समाचार नहीं रहा क्योंकि रूस के खिलाड़ियों ने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से स्पेन को 1-0 की बढ़त मिल गई है। दरअसल खेल के 12वें मिनट में स्पेन का एक बहुत ही शानदार मूव बना और स्पेन के 3-4 खिलाड़ी पेनल्टी एरिया में, जिसे बॉक्स कहा जाता है, वहां पर पहुंचने में कामयाब रहे, और स्पेनिश खिलाड़ी ने जब गोल बॉक्स की तरफ एक ज़बरदस्त किक लगाई तो उसे रोकने की कोशिश में रूसी खिलाड़ी डिफेंडर जो है सर्गेई इग्नासेविच, उनके जूते से गेंद लगी और वो सीधे गोल बॉक्स में समा गई। एक तरह से आत्मघाती गोल इसे कहा जाएगा, सेल्फ गोल। और आदर्श, आप समझ सकते हैं कि इस समय पूरा स्टेडियम जो कि खचाखच भरा हुआ है, करोड़ों लोगों की निगाहें टेलीविज़न के माध्यम से इस मैच पर हैं, तो रूसी दर्शकों के लिए मॉस्को में जो इस समय ये मुकाबला खेला जा रहा है स्टेडियम में, इससे शायद बुरा समाचार उनके लिए नहीं हो सकता। और हालांकि जहां तक ग्रुप स्टेज की बात है, जैसे कि मैंने कहा, वहां रूस ने सऊदी अरब को 5-0 से हराया था और वो एक ऐसी जबरदस्त शुरुआत थी कि वहां पर स्टेडियम में उस समय मौजूद थे खुद प्रधानमंत्री पुतिन और वो गदगद हो उठे थे। और उसके बाद अगले ही मुकाबले में जब रूस ने मेक्सिको को 3-1 से हराया तो उसके बाद ये उम्मीदें बढ़ने लगी कि रूस की टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेगी। लेकिन जो अंतिम मुकाबला था उरुग्वे में, उरुग्वे ने रूस को 3-0 से मात दी, तो वहाँ फिर ऐसा लगने लगा था कि रूस की टीम में भी काफ़ी कमियां हैं। और आज ये खेल के शुरुआती दौर में ही बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि या तो आप उत्साह में कह सकते हैं या फिर किसी और वजह से, लेकिन जो रूसी टीम है उसके लिए ये गलती बहुत ही महंगी पड़ सकती है। और जहाँ तक स्पेनिश टीम की बात है तो उनके कोस्टा बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और वो किसी भी समय में गोल करने की क्षमता रखते हैं, और इसके अलावा नेचो हैं, इसको हैं, एस्पस हैं, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का नक्शा बदल सकते हैं। अब जो रूसी टीम है उसके लिए पूरे टूर्नामेंट में अभी तक गाजिनस्की, चेरिशो, डी ज्यूबा और फैथी, ये जिस तरह से गोल करते आए, और मैं अपने सुनने वालों से क्षमा चाहूँगा कि पुतिन राष्ट्रपति हैं
जी
तो खैर हमसे भी जोश जोश में गलती हो गई और हमारी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने, मानसी जी का। और आज ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा क्रोएशिया और डेनमार्क का। जहां तक डेनमार्क की बात है तो डेनमार्क ने पेरू को 1-0 से हराया था, ऑस्ट्रेलिया को 1-1 से बराबरी पर रोका, और उसके बाद फ्रांस जिन्होंने कल बहुत बड़ा अपसेट किया उसे भी ड्रॉ पर रोका था। दूसरी तरफ क्रोएशिया की टीम है वो अभी तक इस टूर्नामेंट में अजय रही है, उसने नाइजीरिया को 2-0 से हराया, अर्जेंटीना को 3-0 से और आइसलैंड को 2-1 से हराया था, तो देखना है कि वहाँ किस तरह का परिणाम आता है। दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पे, जो आखिरी संस्करण है और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों टीमें बिना किसी गोल के बराबरी पर हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आदेश। और अब इससे पहले कि कार्यक्रम का अंत करें, एक बार फिर सुन लेते हैं मुख्य समाचार मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। उत्तरी दिल्ली के संत नगर बुराड़ी में आज सवेरे एक परिवार के सभी 11 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। मेक्सिको में आज आज लोग देश के इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में मतदान करने वाले हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए हो रहे इन चुनावों में वामपंथी नेता आंद्रे मैनुअल लोपेज अब्राडोर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। थाईलैंड की नौसेना के तैनात देश के उत्तरी प्रदेश में मौजूद उस गुफा तक पहुंच गए हैं जहां बीते सप्ताह से 12 युवा खिलाड़ी और एक कोच, फुटबॉल खिलाड़ी और कोच एक साथ फंस गए थे। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में अधिकारियों का कहना है कि जलालाबाद शहर में एक आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया है जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने, फेसबुक पर आप तक यह कार्यक्रम पहुंचाने की कोशिश की अभिजीत ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दें इजाजत। नमस्कार।